ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा, ओम नमो शिवाय। तो आज के सत्संग में फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 14 प्रकृति के तीन गुण, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ये एक टॉपिक था जो मुझे लगा कि हमें करना चाहिए। टॉपिक है कि सात्विक गुण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जो हम बार बार पढ़ते हैं कि हम लोगों से सुनते भी हैं, लगता है कि हम तो गुणों के प्रभाव में हैं, प्रकृति के गुणों ने हमें जकड़ा हुआ है, तो फिर हम क्या करें, हमारे तो हाथ में कुछ है ही नहीं है ना, और ये गुण भी तो भगवान ने बनाए हुए हैं, ये प्रकृति भगवान ने बनाई हुई है, ये तो हमें फंसा दिया भगवान ने। अब हमारे ऊपर अगर सात्विक लग रहा है तो हम सात्विक की तरह नाच रहे हैं, राजसिक लग रहा है तो हम उसकी तरह नाच रहे हैं, और तामसिक लग रहा है तो हम उसकी तरह नाच रहे हैं, फिर तो हम तो कठपुतली हैं भगवान के हाथ की, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे विचार आते हैं ना लोगों के, ये ऐसे विचार हमारे मन में भी आते हैं। तो आज हम समझेंगे कि एक्चुअली ये गुण कैसे एक्ट करते हैं और हम सात्विक गुण को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन तीनों गुण में सबसे बढ़िया है ना सात्विक, है ना, सबसे बेस्ट है सात्विक, तो हमें उसको बढ़ाना है, तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं वो हम आज टॉपिक करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है तो मुझे लगा कि करना चाहिए, है ना। कल ही हमने ये एक श्लोक समझा कि भगवान ने हमें क्या बताया कि ये तीनों गुण, रास्तिक, सात्विक और तामसिक, ये तीनों गुण आपस में स्पर्धा करते रहते हैं, होड़ मची होती है इन तीनों में, कॉम्पिटिशन चलता रहता है इनका आपस में। तो जिसको जब मौका मिलता है ना वो बाकी दो गुणों को हरा देता है और खुद ऊपर बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी टाइम एक कर्ता पर तामसिक गुण, किसी समय पर राजसिक गुण और किसी समय सात्विक गुण हावी हो जाता है। ये हम अपनी दिनचर्या में देखते भी हैं, एक ही दिन में हम तीनों गुण को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। किसी दिन हम बहुत ज्यादा तामसिकता वाले कार्य करते हैं और उसके अंडर ही रहते हैं, और राजसिक और सात्विक बहुत कम मात्रा में होता है, और किसी दिन हम लोग ज्यादा सात्विक वाले कार्य करते हैं और राजसिक और तामसिक कम मात्रा में होता है। तो ये सर्कल मतलब चलता रहता है, तो ये एक दिन में ही कई बार ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब ये तीन गुण प्रकृति के कार्य करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल कार्य करता हुआ दिखता है। तो ये तीन गुण में कैसे वृद्धि होती है ये हमने कभी नहीं सोचा कि कभी कैसे तामसिक बढ़ जाता है, कभी राजसिक बढ़ जाता है और कभी सात्विक बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए होता है, ये जो हमारी डेली रूटीन में हमारा रहन सहन डिफरेंट, जो हमारा खान पान होता है, कैसी हमारी संगति होती है जिसमें हम रहते हैं, तो इस प्रकार के आचार विचार से ये तीन गुण इफेक्ट होते हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हम कौन से गुण में, और फिर सात्विक गुण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सात्विक गुण एक प्लेटफॉर्म है, सात्विक गुण एक सीढ़ी है दिव्यता की तरफ बढ़ने में, भगवान की तरफ बढ़ने में, क्योंकि भगवान निर्गुण है, भगवान इन गुणों से परे हैं, तो भगवान दिव्य अवस्था में है, तो हमें भी उस तरफ ही बढ़ना है। तो इसलिए हमें फिर लगता है कि हम तो गुणों के प्रभाव में है ना, और फिर हम क्या करें, ये गुण तो हमें भगवान ने दिए हुए हैं, हमें तो भगवान ने फंसा दिया हुआ है, ये गुण भी भगवान के, ये प्रकृति भी भगवान की है, तो फिर मतलब हम क्यों फंस जाते हैं, हम क्यों अटक जाते हैं, क्या लगता है हमें कि हम तो कठपुतली हैं भगवान के हाथों की, हमारे हाथों में तो है ही कुछ नहीं। तो इस तरह के जो थॉट्स है वो हमारे अंदर आते हैं। तो आज हमें ये समझना है कि जो भी हम आज चॉइसेस लेते जा रहे हैं ना, चाहे वो खाना खाने की चॉइस हो, या वेजिटेरियन खाना खाते हो, या नॉन वेज खाते हो, बहुत ज्यादा तला भुना खाते हो, सादा खाना खाते हो, भोग लगाते हो या नहीं लगाते हो, फिर आपकी दोस्ती कैसी है या कैसी करते हो आप, कैसी फ्रेंडशिप है आपकी, टीवी में क्या देखते हो, खाली फ्रेंडशिप ऐसे नहीं कि खाली आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो वाली बात ही नहीं हो रही है, आप टीवी में क्या देखते हो, फोन, आजकल तो फोन में ही सब कुछ है, फोन में क्या देखते हो, म्यूजिक में क्या सुनते हो, ये संगति है हमारी, ये सारे पॉइंट्स हैं कि ये जो चॉइसेस ले रहे हो ना, इसकी फ्री विल किसके पास है? फ्रेंड ध्यान से सुनना है कि जो भी ये पॉइंट्स हैं, कि जो भी चॉइसेस हम लेते हैं लाइफ में, दिन में हम कई चॉइसेस लेते हैं, खाली ये बड़े बड़े डिसीजन की बात नहीं हो रही है कि उसकी डिसीजन के लिए हमने कोई चॉइस ली, दिन में भी हम कई चॉइसेस लेते हैं, इसकी फ्री विल किसके पास होती है? चॉइसेस की फ्री विल आपके पास है। देखो आपने या तो सात्विक गुण वाली चॉइस ली होगी, या राशि गुण वाली चॉइस ली होगी, या फिर तामसिक वाली चॉइस ली होगी। फिर क्या होता है बाद में इंक्रीमेंट के साथ इफेक्ट्स आते हैं, वो है ना एक लोकोक्ति भी, बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से होए। तो ये पूरी लोकोक्ति इस पे सार्थक होती है कि अगर हमने बबूल का पेड़ लगाया तो उसमें आम कहाँ से आएंगे, पेड़ लगाया हमने इमली का तो उसमें आम कहाँ से आएंगे, अमरूद कहाँ से आएंगे, है ना। जो हम करते हैं वही हम पाते हैं, सिंपल गणित ही, जैसा आप करोगे वैसा ही भरते हैं हम लोग सब। अच्छा करेंगे तो वो इंक्रीमेंट के साथ वापस आता है, बुरा करेंगे तो वो इंक्रीमेंट के साथ वापस आता है। और उस समय तो ये गुण इतने हावी हो जाते हैं ना कि सच में ये लगने लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब हमने एक चीज को बहुत लंबे पीरियड तक कर लिया ना, मतलब एक हैबिट डाल ली, उसको लंबे समय तक कर लिया, तो ये गुण फिर ना बहुत स्ट्रांग हो जाता, तो ये गुण बहुत स्ट्रांगली एक्ट करेगा, तब फिर हम सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। देखो फ्रेंड, भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान के कुछ लेना देना नहीं है हमारे इन चीजों से, हमारे कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान तो हमें समझा रहे हैं, भगवत गीता में कितनी बार समझा रहे हैं कि तुम सब कुछ सारे धर्मों को भुला के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे जो गलत काम है तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन क्या हम सुनते हैं, कह रहे हैं भगवान भगवत गीता में कि जितने भी तुमने बुराई है, जितने भी तुमने पाप किए हैं, सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आना मतलब कि फिर भगवान की बात मानना, फिर वो गलतियां रिपीट नहीं करनी, यानी कि फिर से वो गलतियां की फिर चले गए, भगवान मैं तो आपकी शरण में हूँ, है ना, फिर माफी मांग ली, फिर वो उससे गलती की, फिर से शरण में चले गए, भगवान सॉरी मैंने तो सेम गलतियां फिर रिपीट नहीं करनी है। शरण मतलब भगवान के अकॉर्डिंगली, भगवान जो बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को लीड करना, भगवान आपको रास्ते बताते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली लाइफ जीना, जो भी भगवत गीता में हम समझ रहे हैं बातें उनको अपनी जिंदगी में उतारना। गलतियां तो होंगी, तब भी ये थोड़ी हम गलतियां नहीं करेंगे, गलतियां तो करते रहेंगे, लेकिन इंटेंशंस हमारी क्लियर होनी चाहिए, मतलब जानबूझ के गलतियां नहीं करनी है, इंटेंशनली गलतियां नहीं करनी है। वैसे तो गलतियां होंगी, उसकी माफी मांग लो, आगे बढ़ जाओ, है ना, ये नहीं कि गलतियां अपनी रिपीट करते रहो फिर माफी मांगते रहो, तब भगवान खुश नहीं होते, ऐसी भक्ति से भगवान खुश नहीं होते। तो हम बात कर रहे थे कि जो भी चीजें हम बहुत लंबे समय तक कर लेते हैं ना, तो वो गुण बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और फिर हम कहते हैं कि भगवान ने किया ये सब कुछ। देखो कोई भी चीज अगर हमने बार बार कर ली ना, तो पर्टिकुलर जो गुण है ना हम पर एक्ट करता है, ये हमारे हाथ में होता है। देखो पिछले जन्मों से शुरुआत करते हैं कि गुण कैसे होते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। देखो मतलब पिछले जन्मों से ही हम दोस्तियां करके आए हैं, ये सब कुछ अभी इस जन्म की बातें नहीं हो रही हैं, पुराने कई जन्मों की यात्रा है हमारी, किस किस से हमने दोस्तियां की हुई थी, कैसा कैसा खाना हमने खाया हुआ था। और देखो ये चार पांच फैक्टर है कि कैसा आप खाना खाते हो, आपकी संगत कैसी है, कैसी आपकी फ्रेंडशिप है, आप देखते क्या हो, किस तरह की चीजें पढ़ते हो, किस तरह की चीजें सुनते हो, ये सारी चीजें हमारे अंदर के सात्विक राजसिक और तामसिक गुण को बढ़ाता है। तो इस सारी कैटेगरी को समझो ताकि आप एक अवेयर चॉइस ले सको, कि आपको पता लगे कि ठीक है, अच्छा मैं ये चॉइस ले रही हूँ तो मैं फिर कौन से गुण को बढ़ा लूंगी अपने, अगर मैं इस गुण को बढ़ा रही हूँ फिर उसके अकॉर्डिंगली मुझे परिणाम मिलेंगे, है ना। फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, अब पहले तो पता नहीं था, मनगढ़ंत तरीके से जो मन ने बोला वही जीवन जी रहे थे, लेकिन अब आपको पता लग गया कि अगर मैं तामसिकता वाली चॉइस लूंगी तो मैं तामसिक गुण को बढ़ा लूंगी, राजसिक वाली चॉइस लूंगी तो मैं राजसिक गुण को बढ़ा लूंगी, और अगर सात्विक चॉइस लूंगी कोई भी डिसीजन लूंगी तो मैं अपने सात्विक गुण को बढ़ाऊंगी। अब तो पता चल गया, जैसे देखो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लो आपका वेट 60 kg है और आज आपने बहुत सारी आइसक्रीम खा ली, जलेबी खा ली, गुलाब जामुन खा लिए, बहुत सारा, आज पार्टी थी और आज आपने बहुत सारा कुछ खा लिया, तो क्या आज ही आपका वेट 70-75 हो जाएगा? कब आएगा इसका इफेक्ट? एक दिन में हो जाएगा कि लंबे समय तक अगर आप वही बुरी आदतें पकड़ कर रखोगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। उस समय हम अज्ञान के कारण ये लिंक नहीं कर पाते कि ये बीज मैंने ही बोए हुए थे, क्योंकि मैं खाती रहती थी मीठा नमकीन, है ना, तो मैं वेट को बढ़ाती गई और बढ़ते बढ़ते अब इसका इफेक्ट आया है 15-20 साल बाद। देखो किसी भी चीज का इफेक्ट एक दिन में नहीं होता। देखो एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि समझ लो दो लड़के हैं, एक लड़के का नाम अर्जुन है और दूसरे लड़के का नाम सौम्य है। मान लो दोनों की नॉर्मल लाइफ चल रही है, फिर क्या हुआ, अर्जुन के पेरेंट्स ने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन कर लिया। पेरेंट्स को देखकर अर्जुन को भी लगा कि मुझे भी सत्संग लगाने चाहिए, फिर उसने भी सत्संग लगाने शुरू कर दिए। वहां से उसको इंस्पिरेशन आई कि मुझे भगवान को भोग लगाना चाहिए, है ना, मुझे भी अपनी फैमिली के साथ आरती करनी चाहिए, मुझे भी चैंटिंग करनी चाहिए। सत्संग में समझाया गया कि अपनी ईटिंग हैबिट्स इम्प्रूव करो, फ्रूट्स खाओ, खूब पानी पियो, हमें सात्विक खाना खाना चाहिए। तो फिर क्या हो गया, अर्जुन भी अपनी परिवार के साथ भगवान को भोग लगाना शुरू हो गया, रात को सब फैमिली इकट्ठे आरती करना शुरू होगी, चैंटिंग करने शुरू हो गया अर्जुन, माला करना शुरू कर दी, मतलब सत्संग करने शुरू कर दी, भगवत गीता ध्यान से सुनने शुरू हो गया। और दूसरी तरफ उसका फ्रेंड जो सौम्य था, जो दूसरा पर्सन था सौम्य, वो अपने पिताजी को रोज ड्रिंक करता देखता था। तो बाहर उसके दोस्त ने उसको कहा कि चलो आज बियर पी लेते हैं, तो उसको क्या लगेगा कि यार चलो बहुत मजा आता होगा, मेरे पिताजी भी तो पीते हैं, है ना, तो उसने भी चॉइस ले ली और पीना शुरू कर दिया। जब वो पहला दिन था ना उनका, कि एक दिन अर्जुन ने सत्संग अटेंड किया था और एक दिन उसने बियर पी थी, तो अगले दिन अगर आप उन दोनों को देखोगे ना, तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा दोनों में, उनके चेहरों पर, उनकी जिंदगी में इस चीज का कोई फर्क नहीं आया होगा, एक दिन में कोई डिफरेंस नहीं दिखने वाला। लेकिन जब यही चीज 5 साल तक चलती रहेगी ना, कि ए अर्जुन रेगुलर सत्संग करता रहा, पहला पर्सन मतलब अर्जुन रेगुलर सत्संग करता रहा, रेगुलर माला करता रहा, सात्विक खाना खाता रहा, अपने पेरेंट्स के साथ आरती कर रहा है, भोग लगा रहा है, भक्ति में एंगेज हो गया, तो 5 साल बाद वो बड़ा वाइस, हम्बल, खुश रहने वाला व्यक्ति, एक बैलेंस करने वाला इंसान बन जाएगा, जो कि जिंदगी के हर एस्पेक्ट में खुश रहता है। उसके रिलेशनशिप ज्यादा बढ़िया होंगे, उनमें ठहराव आ चुका होगा। तो अर्जुन वहां पे पहुंच गया, लेकिन दूसरा पर्सन सौम्य, पर्सन बी, उसकी शुरुआत बियर से हुई थी। वो दोस्तों के साथ पब जाता था, वहां उसके फ्रेंड्स ने उसको ड्रग से इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो नशे की तरफ चला गया और एक दिन उसको ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ा, या चलो सेंटर में नहीं भी डालना पड़ा तो उसको, मतलब वो नशों में पड़ गया एक तरह से, बहुत ज्यादा हैबिट्स हो गई उसको ड्रिंक्स की और उसने पढ़ाई भी अपनी छोड़ दी, तो वो लाइफ के हर एक चीज में फेल हो गए। और पहले दिन जो उसने चॉइस ली थी ना, जो पहली बार उसने बियर पी या सिगरेट पी या ड्रग्स लिए, या दूसरे ने अर्जुन ने जो सत्संग लगाया, क्या इफेक्ट दिखाएगा आपको? देखो एक दिन में कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला, गुणों का प्रभाव आता है लंबे समय के बाद, जब हम एक चीज रेगुलर करते रहते हैं ना, बार 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 करते रहते हैं, फिर हम उन गुणों में जकड़े जाते हैं। पहली बार तो देखो सौम्य को ड्रिंक जो की होगी, उसने बियर पी होगी, वो तो उसको कड़वी लगी होगी, बेकार लगी होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, फिर वही आदत उसको कंट्रोल करती है। तो पहले वो चॉइस जिसने भी ली थी, अच्छी या बुरी, सात्विक में जाने वाली, राजसिक में या तामसिक में जाने वाली, लेकिन बाद में इन चॉइसेस का बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि जब एडिक्शन बढ़ जाती है ना किसी भी चीज की, चाहे वो टीवी देखने की हो, इसको हम अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। इसलिए मान लो एक दो लेडीज है ना, दो फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड ने चॉइस ली कि मेरे को सत्संग सुनना, एक घंटा सुनना ही सुनना है, ठीक है यार, मैं चाहती थी, मैं भगवत गीता पढ़ना चाहती थी, चलो मुझे एक घंटा, मैं देखती हूँ सही क्या बोलते हैं वो। इतना भी अगर वो सोच लेगी ना, 8-10 सत्संग भी लगा लेगी ना, तो 100% है कि वो पूरा भगवत गीता सुन लेगी, ज्यादातर 99% चांसेस होते हैं, है ना। लेकिन दूसरी उसकी फ्रेंड ने चॉइस ली कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकती यार, मैं तो अपना बेस्ट कर रही हूँ, मुझे तो बस इस टाइम सोना है या मुझे टीवी देखना है, मैं उसी वक्त फ्री होती हूँ, तो किसकी प्रोग्रेस होगी? चाहे तामसिकता वाली प्रोग्रेस होगी, चाहे सात्विकता वाली प्रोग्रेस होगी। और हमारी आदत होती है ना कि हम हर चीज में फायदा ढूंढते हैं, तो अगर हमें ये बात भी पता लग गई ना कि तामसिक चॉइस लेने से क्या होता है ना, और सात्विक चॉइस लेने से क्या होता है, और राजसिक चॉइस लेने से क्या होता है, तो भी हम सुधरने वाली लाइन में आ जाएंगे कि नहीं नहीं यार, मुझे सात्विक चॉइस लेनी चाहिए, मुझे तामसिक वाली या रास्तिक वाली चॉइस नहीं लेनी है, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में इन चॉइसेस का बहुत इफेक्ट आता है ना। क्योंकि जब एडिक्शन बढ़ जाती है ना किसी भी चीज की, किसी भी चीज की, चाहे वो टीवी देखने की हो, चाहे वो निंदा चुगली की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, जो भी हमें डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स होती हैं। अब टीवी देख रहे हैं, मान लो फोन पे लगे रहते हैं हम घंटों घंटों, है ना, तो उसमें हमें पता भी नहीं होता हमने देखना क्या है, हमें क्या पता होता है हमें क्या देखना क्या नहीं देखना। हम जब स्क्रॉल करते हैं तो कितना कुछ आता है उसमें, तो हम सब कुछ देखते हैं ना। मैं खुद भी स्क्रॉल करती हूँ कई बार, तो मैंने आज ही कई चार पांच जो बेकार से वीडियोस आते थे ना, मैंने उनको स्टॉप किया कि नहीं, ये इस तरह के वीडियोस मेरे को ना आए। तो ये चॉइस हमारी है ना कि अगर हम फोन भी हाथ में लेते हैं तो हमें देखना क्या है उसमें, क्योंकि वो जब आएगा तो हम देखेंगे, कोई भी चीज आएगी स्क्रॉल करते हैं तो आती है वो सामने दिखती है। तो लेकिन चॉइस ले लो उसको कि मुझे उसको देखना है या मुझे नहीं देखना। टीवी हम देख रहे हैं अगर, तो टीवी की चॉइस ले लो कि उसमें मुझे देखना क्या है, सास बहू के सीरियल देखने हैं, 99.9% लड़ाई झगड़ों के अलावा कुछ नहीं होता, या फिर वो न्यूज जो बार बार हमें नेगेटिविटी परोसती है, एक ही तरह की चीजें रहती है जिसमें जिसमें 50-60% तो सब होता भी नहीं है, और इस तरह से हमें वो नेगेटिविटी परोसती जाती है कि हम लोग तामसिकता में आ जाते हैं। ठीक है, न्यूज सुन लो 10-15 मिनट, दिन के एक शेड्यूल बनाओ कि 10-15-20 मिनट मेरे को न्यूज सुननी है, बस आगे बढ़ जाओ, उसको अपने अंदर इतना मत घुसाओ उस न्यूज को। तो जब हमें एडिक्शन बढ़ जाती है ना किसी भी चीज की, तो विल पावर भी फिर घुटने टेकने लग जाती है इस आदत के सामने, और फिर गुणों का प्रभाव इतना स्ट्रोंग हो जाता है जब हम 5-10 साल इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे इन चीजों की, कि फिर सच में लगेगा कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि तो जो मन में आता है हम वही मनगढ़ंत जीवन जी रहे होते हैं, तो फिर हमें क्या लगता है सब कुछ शायद भगवान ही कर रहे हैं। तो हम भूल जाते हैं कि जो हमने चॉइसेस ली थी ना, इस कारण हमारा तामसिक गुण बढ़ गया है, इस कारण आप दूसरी डायरेक्शन में चले गए। तो इस तरह से सोल्स बहुत कुछ पुराने जन्मों से कुछ ना कुछ गड़बड़े करते आई है, इस जन्म की बात भी है और पिछले जन्मों से भी, मिक्स्ड कार्मिक अकाउंट रहता है हमारा। तो हो सकता है आपकी इस जन्म में शुरुआत 50% तामसिक, 25% राजसिक और 25% सात्विक से हुई, और किसी और में 50% राजसिक, 25% तामसिक और 25% सात्विक से हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन पिछले जन्मों से भी होता है कई बार, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे दोनों बच्चों के, दो बच्चे हों मान लो हमारे, तो उन दोनों बच्चों के नेचर में भी डिफरेंस होता है। एक को हो सकता है आपको धक्का देना पड़ता है डिसिप्लिन में रहने का, और दूसरा बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, क्योंकि जिसका सात्विक गुण पिछले जन्मों से बड़ा हुआ होगा ना, तो वो बहुत सारी चीजें कर ही रहा होगा स्टार्टिंग से ही, आपको उसको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता होगा। तो पिछले जन्मों को तो हम ज्यादा समझ नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन इस जन्म में हम कैसे पहचाने कि हम कौन से गुण में एक्ट कर रहे हैं, वो समझेंगे हम तीन चीजों से। एक तो जो विचार होते हैं हमारे, और एक दोस्ती कैसी की हुई है हमने, और फिर हमारा फूड कैसा होता है। तो पहले फूड पर बात करते हैं कि मान लो ए पर्सन को सादा खाना पसंद है, सिंपल दाल चावल खाना उसको बहुत पसंद है, उसको फ्रूट्स पसंद है, पानी पीना पसंद है, फ्रेश वेजिटेरियन फूड को, है ना, जो सात्विक है। तो ये फ्रेश चीजें आपके अंदर सात्विक गुण को बढ़ाती हैं। अगर हम इस खाने का फिर भोग लगा देते हैं और प्रभु को क्या कहते हैं, प्रभु को कहते हैं कि प्रभु इस खाने में अपनी ब्लेसिंग्स दो, प्रभु थैंक यू है कि हम आपकी वजह से ये खाना हम खा पा रहे हैं, कोई स्ट्रगल नहीं है हमें खाने का कि हम 3 टाइम क्या कितनी बार खाना खाते हैं, तो प्रभु अपनी ब्लेसिंग्स दो हमें, थैंक यू प्रभु जो आपने दिया मुझे, ताकि हम जब फिर ये भोग ग्रहण करें तो क्या होगा, फिर हमारी भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स हो जाएंगी, है ना। क्योंकि देखो फ्रेंड, जो भी कुछ हमें मिलता है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो खाना है, चाहे वो घर है, चाहे वो कोई भी लग्जरीज चीजें हमें जो भी मिल रही है ना, या जो खाना भी मिल रहा है, सिंपल दाल रोटी भी मिल रही है ना, तो वो किसकी कृपा से मिल रहा है। हम सबको जो भी अभी सत्संग में है ना, सिंपल जो खाना है ना और घर है, ये सब हम लोगों के पास है, किसी को इन छोटी छोटी बातों से हमें स्ट्रगल नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर देखें ना, अपने घर से थोड़ा बाहर निकले और दुनियादारी में देखे ना, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है लोगों के पास, खाना खाने को नहीं होता उनके पास। अभी खाना खाया, दिन में खाना खाने, मैं अपना बताती हूँ, मेरे पास मेड आती है ना, तो मैंने बोला क्या खा के आती हो तुम सुबह, बोलती मैं कुछ नहीं खा के जाती हूँ, मैं शाम को 5:30 बजे घर जाती हूँ सारा काम करके, फिर मैं खाना खाती हूँ। सोचो पूरा दिन का उसने कुछ नहीं खाया होता है। देखो ये स्ट्रगल है हमें क्या हमारे जीवन में, वो पूरा शाम 5:30 तक काम करती है, फिर जो भी वो बना के आती है या जो भी है वो खाती होगी ना। तो क्या हमें ये स्ट्रगल्स हैं और फिर भी हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा दुखी तो मैं ही हूँ, यही सोचते हैं ना हम। नहीं, दूसरे का जीवन तो बहुत सुखी है, मेरा जीवन बहुत दुखी है। कभी भी जब हम बात करते हैं तो हम इसी लहजे में बात करते हैं। तो भगवान को शुक्रिया करो, भगवान को थैंक यू करो कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं हमें, है ना। शुक्राना करना सीखो भगवान के आगे। जो भी चीजें मिलती है ना, आप जरूरी नहीं है कि खाना, किसी भी चीज का, जो आप राशन लेते हो, आप कपड़े लेते हो, तो मन में ही बेशक भगवान को थैंक यू करो कि प्रभु मैं आपकी वजह से ये सब चीजें ले पा रही हूँ। बड़ी चीजें लेते हो, कार लेते हो, घर लेते हो, पहले चाबियां भगवान के आगे रखो कि प्रभु ये आपकी वजह से ये सब कुछ ले पा रही हूँ मैं, आपने ही दिया है मुझे। ताकि हम जब ये चीजें फिर जब यूज करते हैं ना, तो हमारी भक्ति बढ़ती है। तो सत्संग के साथ साथ अपनी डाइट को चेक करना है। और ज्यादातर हम लेडीज बच्चों को भी फ्रूट्स देंगी, बड़ों को भी काट कर देंगी, बट खुद नहीं खाएंगी। इसमें मैं भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मतलब थी बोल सकती थी कि मैं बिल्कुल वाकई में सबका ध्यान रखती थी, लेकिन मैं फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाती थी, ना मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स खाने कि चलो बाकियों को दे दो, अपना वाले लगता था टाइम ही नहीं है, चलो खाना बना लो और रेस्ट कर लो, बस ये लाइफ चल रही थी हमारी, है ना। लेकिन जब हम इस रास्ते में चलते हैं तो लगता है यार नहीं, मुझे अपना भी ध्यान रखना है, मैं अपना ध्यान रखूंगी तो मैं बाकियों का भी ध्यान रख पाऊंगी। तो ज्यादातर हम लेडीज क्या करती हैं, कुछ भी बचा खुचा, कुछ भी फालतू चीजें खा लेंगी, है ना। तो अगर सात्विक गुण बढ़ाना है ना हमें अपने अंदर, तो डाइट पर भी ध्यान देना है, वाटर का इंटेक बढ़ाना है। और पानी पीते वक्त क्या करना है, क्या कहा था भगवान ने भगवत गीता के एक श्लोक में कि पानी का स्वाद मैं हूं, तो हमें पानी का गिलास हाथ में लेना है। जब भी, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको याद रहेगी, है ना। जब भी गिलास पानी का हाथ में ले लिया, अपना गिलास भी, और मान लो आप बच्चों को दे रहे हो, अपनी फैमिली में से दे रहे हो, जब भी आपको याद आती है ना, वैसे रोज याद रहे तो बेस्ट है, तो क्या करना, पानी गिलास में ले लिया, हाथ में पकड़ा, और क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोलो 3 बार, बोलो 5 बार, बोलो 1 बार ही बोल दो चलो, और वो वाला पानी फिर अपने बच्चों को दो। खाना दे रहे हो तो खाने का भोग लगाओ, जिसमें पानी भगवान को रोज हम जैसे सभी चढ़ाते होंगे, पानी हम जैसे भगवान को चढ़ाते हैं खाने के साथ, तो उस पानी को मैं फिर नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स को दूसरे बड़े जग में मिक्स कर देती हूँ, फिर वो पानी मैं सबको देती हूँ, पूरा दिन वो चलता है मेरे, उसको बढ़ाती जाती हूँ। फिर नेक्स्ट डे फिर से वो रख दो, कॉपर का रखा हुआ मैंने गड़वी, तो फिर वो पानी भर लो, फिर वो आप अपनी फैमिली को दे सकते हो। और जो भोग है वो अपना, जो भी आप खाते हो, जो भोग बिना प्याज लहसुन के खाना भोग लगाना है, तो फिर वो वाला खाना अपने खाने में मिक्स कर लो, तो सबको फिर वो खाना आप एज ए भगवान की ब्लेसिंग्स दे सकते हो। तो कुछ भी खाना जब भी हम खाते हैं ना, तो कुछ भी चीज हम पहनते हैं, कुछ भी चीज हम यूज करते हैं, तो हमें भगवान को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये सब कुछ दिया है, और उन्हीं को याद नहीं करते हम। तो प्रभु को याद करते वक्त, प्रभु को स्मरण करते हुए पानी पीना है, प्यास लगे या ना लगे पानी पीना है। तो पानी का इंटेक बढ़ाना है और फ्रूट्स जरूर खाने हैं सबने। अब वही वेजिटेरियन फूड को हमने तीखा कर दिया, है ना, ज्यादा मसाले वगैरह डाल दिए उसमें, ओवर कुक कर दिया, तो फिर क्या हो गया, वो रास्तिक भोजन हो जाता है फिर वो। तो फिर चेक करना है कि कहीं मैं ज्यादा तला भुना तो नहीं खाती, ज्यादा मसाले तो नहीं खाती, है ना। अभी खा रहे हो तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि देखो फ्रेंड, बदलाव एक दिन में नहीं आते। तो 1 साल में आप सोच लो कि मेरे को एक चीज बदलनी है, है ना, कम से कम अपनी ईटिंग हैबिट्स में, है ना। अगर आपकी विल पावर ज्यादा है तो आप सोचो कि मैं 1 महीने में एक अपनी हैबिट बदल सकती हूँ। आप सोचोगे एक ही दिन में मैं सब कुछ कर लूंगी, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, फिर हम नीचे गिर जाते हैं, और फिर दुख होता है कि यार मैं कर नहीं पाई। तो धीरे धीरे हमें बढ़ना है आगे। देखो आप सोचो कि हर महीने सोच ली मैंने एक चीज बदलनी है अपने जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में भी। मसाले वाला खाना आप सोचो कि मैं 7 दिन नहीं, मैं 5 दिन खाऊंगी, इतना सा प्रयास शुरू कर दो, है ना। प्याज लहसुन जो खाते हैं ना हम, ये भी एक रासिक है। लेकिन देखो फ्रेंड्स, प्याज लहसुन भी एक बड़ी चीज नहीं है, मेरे को लगता है तो रासिक है, लेकिन प्याज लहसुन से भी ज्यादा अपने अंदर के विकारों पे वर्क करना। प्याज लहसुन खाना आपने बंद किया मान लो, तो क्या होगा फिर, आप अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब करोगे कि नहीं मैं प्याज लहसुन, तुम भी मत खाओ, इतने तो हम है नहीं है कि हम लोग अपना बंद करें और हम दूसरों का ध्यान रख लें। हम खुद बंद करते तो हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स भी बंद करते, क्योंकि खाना लेडीज ने बनाना होता है, तो फिर वो अपने वाला ही बनाएगी ना, कोशिश तो उसकी यही रहेगी। हाँ, अगर आप कोशिश कर सकते हो कि मेरा खाना मैं अपना अलग बनाऊंगी और इस चीज का मैं अपनी फैमिली को प्रेशर नहीं दूंगी, है ना, मैं कुछ भी खा लूंगी लेकिन मैं अपनी फैमिली को प्रेशर नहीं दूंगी। अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि हमारी फैमिली डिस्टर्ब ना हो इन चीजों से। उससे भी ऊपर है जो अपने विकार है ना, जो हमारी नेगेटिविटीज है ना अंदर, इतने भर भर के बुराइयां हैं हमारे अंदर, पहले उन पे वर्क किया जाए। तो सात्विक आहार से शांति मिलती है, ज्ञान बढ़ता है, बुद्धिमता बढ़ती है और भक्ति में रुचि भी बढ़ती है। और रास्तिक आहार से क्या होता है, दुख मिलता है, लालच बढ़ता है और दुनियादारी की इच्छाएं बढ़ती हैं। और तामसिक आहार में, जैसे तामसिक आहार क्या होता है, तामसिक आहार हो गया नॉन वेज फूड और रेस्टोरेंट्स का गला सड़ा फूड। तामसिक और रास्तिक प्रधान होता है फ्रोजन फूड, ये सब तामसिक और रास्तिक आहार है। और देखो फ्रेंड, अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो ज्यादा नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम नॉन वेज खाना हमें नहीं खाना चाहिए। मैं भी खाती थी नॉन वेज, कि मैं आप बोलो कि मैं बचपन से नहीं खाया हुआ है, मैं भी खाती थी, लेकिन अब मुझे छोड़े हुए कम से कम भी तो 10-12 साल हो चुके हैं। प्याज लहसुन देखो छोटा पॉइंट है, लेकिन नॉन वेज खाना बहुत बड़ा पॉइंट है। तो नॉन वेज से बिल्कुल बचना चाहिए हमें, क्योंकि इससे जीव हत्या हो रही है और फिर हाई लेवल का कार्मिक रिएक्शन होता है, तो उससे हमें बचना है। अगर हमें अध्यात्म में आगे बढ़ना है ना, भगवान के साथ कनेक्शन बनाना है, तो हमें कम से कम इस पॉइंट पे तो हमें वर्क करना ही करना चाहिए फ्रेंड्स। और कोशिश करेंगे ना तो 100% हो जाता है कि मेरे को नहीं खाना है, वो तो एक ही दिन में हो जाएगा। मैं तो एक ही दिन में शुरू कर दिया था कि आज से मुझे खाना नहीं है तो नहीं खाना। वो मैंने किसी चीज के लिए किया था, मतलब आज मैं बोलो तो मेरे को किसी ने बोला था कि अगर आपको कोई चीज चाहिए हो तो आप अपनी एक सबसे अच्छी चीज छोड़ सकते हो तो आपको वो चीज मिल जाती है। तो उस वक्त मुझे अपने बच्चों को लेकर बहुत डिस्टरबेंस रहती थी, कि तो मुझे लगता था कि मेरा बेटा बस पढ़ ले किसी तरह से। तो मैं भगवान, नॉन वेज मेरे को बहुत पसंद था, मैं आज आपको समझा रही हूँ, लेकिन उस वक्त मैं बताऊं आज से 8-10 साल पहले तो मैंने सोचा मैंने भगवान ये पढ़ना शुरू कर दे, अपना लाइफ के बारे में सोचे तो मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगी। तो मैंने वो सोचा और उस दिन के बाद मैंने नॉन वेज को हाथ ही नहीं लगाया। और एक दिन में छूट जाता है, मैंने तो चलो ये दुनियादारी के लिए छोड़ा, लेकिन अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हो, कितना कुछ सीख लिया हमने, है ना, तब तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था इसका भगवद गीता के बारे में, तो अब तो हम ज्यादा इजीली छोड़ सकते हैं। छोड़ दिया, आज ही सोच लो कि मैंने आज से मैंने नहीं खाना है, मेरे को नहीं खाना नॉन वेज, घर में खाना है खाओ बनाओ, लेकिन आपने खाना नहीं है ना। तो आप इस तरह से सोच सकते हो, है ना, ये नहीं मैं बोल रही हूँ, तो लेकिन आप इस पे वर्क कर सकते हो ना। तो अगर प्याज लहसुन वाला पॉइंट है ना 0.1 है वो, तो नॉन वेज वाला पॉइंट है 100 है ना। तो अध्यात्म में आगे बढ़ना मतलब करुणा से भरना, मन का शांत होना, अहिंसा की तरफ बढ़ना, और शराब पीना, नॉन वेज खाना, नशे करना, ये सब तमोगुण की निशानी है ना। तो इस तरह से सेकंड कैटेगरी, अपनी संगत को चेक करो, किसके साथ आप अपना समय बिताते हो। देखो जरूरी नहीं है कि कोई आपका 10 साल से आपकी फ्रेंडशिप है तो आपने जीवन भर उसके साथ एसोसिएट करते रहना है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के लोगों के साथ एसोसिएट करें जो कि सेम दिशा में चल रहे हों। तो आपको डिवोटीज के साथ दोस्ती रखनी है जो ऑलरेडी ईश्वर की तरफ चल रहे होते हैं, और दुनियादारी के लोगों में चेक रखना है कि कौन से गुण में ये है ज्यादा। मान लीजिए आपको लगता है कि ठीक है यार, ये इसमें है तामसिकता वाले और रास्तिक वाले गुण मेरी एक फ्रेंड में, तो चलो मैं उसको समझा देती हूँ। लेकिन अगर उसका मान लो तामसिक गुण ज्यादा बढ़ा हुआ है, मान लो उसका 50% है तामसिक गुण और आपका सात्विक गुण अभी 15% पे है, 15% पे है, तो फिर क्या होगा, आप उसको नहीं समझा पाओगे, वो आपको समझा देगी। अगर उसका 50% है ना तामसिक गुण और आपका सात्विक गुण 15% है, आप नहीं उसको समझा पाओगे, वो आपको समझा जरूर देगी। तो अपनी स्टेज और स्पिरिचुअलिटी को समझ कर चलना है हमें आगे, कि हम अभी स्पिरिचुअलिटी की कौन सी स्टेज में हैं। हर जगह कूद नहीं जाना है बिल्कुल ही कूद गए चलो जी समझाने के लिए, तो पता चला किसी और को समझाने के चक्कर में आप ही दलदल में खींच लिए गए हो। तो दोस्ती में केयरफुल रहना है हमें, है ना, कि उनकी आदतें कैसी हैं, सोचते कैसे हैं, अपने घर में अपने बच्चों के साथ या जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि फ्रेंड दूसरों के करेक्टर के गुण हमारे अंदर आते हैं। इसलिए सत्संग, अपनी इंटीमेट दोस्ती, डिवोटीज के साथ क्लोजनेस और दुनियादारी के लोगों के साथ प्रैक्टिकल डिस्टेंस बनाकर चलना है। तो प्रैक्टिकल डिस्टेंस भी इस तरह से करना है कि ये नहीं कि उसको बात करने बंद कर दिया आपने, हाय हेलो कम से कम रखनी है, कि अगर वो कल को आगे बढ़ना चाहे, डिवोशन के रास्ते में आपके साथ चलना चाहे, तो आप उनकी हेल्प कर सको, है ना। बट करण की तरह इस तरह की दोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ जाना है कि आप अच्छे बुरे की पहचान ही भूल जाओ। शुभ चिंतक सबका रहना, लेकिन अगर ज्यादा उनकी तरफ गए तो फिर वो अपनी तरफ आपको खींचेंगे, तो बचकर चलना है, हम कुछ नहीं सीख पाए। देखो 10 साल से मान लो मेरी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों के साथ है कि जो तामसिकता में पड़े हुए हैं, रोज की उनकी पार्टीज चल रही है, ड्रिंक्स चल रही है, तो मैं भी तो वही चीजें सीखूंगी ना। मेरे को लगेगा कि यार वो भी हर साल देखो 2-3 बार घूमने जाते हैं, है ना, फॉरेन टूर जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, तो मुझे भी शायद यही लाइफस्टाइल अच्छा होता है, मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए, है ना। तो हमें चेक रखना है, तो संगत भी होगी और फूड भी हो गया। लेकिन खाली लोगों वाली संगत नहीं है, जो भी आप टीवी में क्या देख रहे हो, फोन में क्या देख रहे हो, है ना, आपके विचार मैनिपुलेट होते हैं इससे, है ना। तो टीवी में चेक करो कि आप क्या देख रहे हो, न्यूज चैनल में क्या हमें सात्विक गुण बताए जाते हैं, न्यूज चैनल में फ्रेंड्स हमेशा ही तामसिक वाला मसाला बताया जाता है, या फिर क्या बताया जाता है, सेलिब्रिटीज को बताया जाता है, राशि गुण बताए जाते हैं उनके। तो अगर हमें टीवी देखना है, फोन पे कुछ देखना है, स्क्रॉल करना है, तो क्या करना है, डिवोशनल चीजें हमें देखनी है। अगर संगीत सुनना है तो भजन सुनने हैं, क्योंकि ये चीजें आपका सात्विक गुण बढ़ाएंगी। और वर्ल्डली लाइफ की न्यूज पर लिमिट लगानी है, 10-15 मिनट सुनी और आगे बढ़ गए। जैसे हम लोग देखो स्काइप के थ्रू ही मिल रहे हैं, मैं तो बहुत कम लोगों से मिली हुई हूँ, आप सब में से तो मैं ज्यादातर लोगों से मिली नहीं हूँ, है ना। तो हम दिव्य गुण एक्सचेंज हो रहे हैं हमारे बिना मिले ही, सात्विकता वाले गुण बढ़ रहे हैं ना। और फिर आएगा कि डेली रूटीन कैसी है, उस पर चेक रखना है कि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहोगे, जिस तरह का आप खाना खाओगे, तो उससे हमारे विचार बनते हैं, हम अपनी चॉइसेस को बदल सकते हैं। देखो जैसे कोई इंसान 2 घंटे सत्संग सुनता है, नोट्स बनाता है प्रॉपरली, रिव्यूज भी दे रहा है, और दूसरा इंडिविजुअल 2 घंटे टीवी देखता है, क्रिकेट देखता है, सास बहू के सीरियल देखता है, तो 10 साल से मान लो वो दोनों ऐसा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो छोटे छोटे चेक रखने हैं कि क्या मैं तामसिक चॉइस ले रही हूँ, या सात्विक चॉइस ले रही हूँ, या दिव्य होने की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। घर बार नहीं छोड़ना, फ्रेंड्स कैरियर नहीं छोड़ना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव को छोड़ना है। कई लोग तो कई बार ना, कई लोगों से मेरी बात होती है तो क्या कहते हैं वो, यार हम घर में रहते हुए कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगता है मैं बाहर कुछ सेवा कर लूं, अपना घर बार छोड़ के, मीन्स मैं अपना घर बार छोड़ के कहीं बाहर किसी इंस्टीट्यूट में चले जाऊं, कहीं संस्था में चले जाऊं और वहां पे मैं सेवा करूं। अरे पहले भगवान ने हमें जो ड्यूटीज दी हैं उनको तो बेस्ट वे में कर लेते हैं, फिर अगला स्टेप भगवान खुद ही बताएंगे भी तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। पहले हमें जो डिस्ट्रक्टिव छोड़ने को बोल रहे हैं पहले वो तो कर लें, कि पहले ही जब हम हैं, हम हाई स्कूल में हम जाना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं हम लोग, हम छोटी छोटी बात नहीं करते, हम सीधा हाई लेवल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स छोटी छोटी बातें जब सीखते रहेंगे ना, तो अपने आप वो हायर लेवल भी आ जाता है फिर धीरे धीरे। तो हमें घर बार नहीं छोड़ने हैं, भगवान जो ड्यूटीज दी है उसको बेस्ट वे में करना है, अपने कैरियर लाइफ की ड्यूटीज बेस्ट वे में करनी है, सिर्फ क्या करना है, डिस्ट्रक्टिव को छोड़ना, और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ही तमोगुण की एक्टिविटीज है। तो आप तमो और रासिक की जगह तत्व और रासिक में आ सकते हो। अगर आप रासिक में भी आ गए ना, तामसिक छोड़ के, तब भी आप कुछ तो कर रहे हो ना, कम से कम कुछ तो एक्टिव पार्टिसिपेट करोगे अपनी लाइफ में, तामसिकता से तो बचोगे, क्या फालतू सोए हो, कम से कम टीवी देखते ही माला ही कर लोगे, तो कुछ ना कुछ गुण तो आगे बढ़ेंगे आपके। मान लो आप बोलते मेरे को माला करने का टाइम नहीं है, मेरे को टेलीकाउंटर पकड़ने का टाइम नहीं है, तो कम से कम कुछ भी जब भी आप कर रहे हो ना, टीवी देख रहे हो, शुरुआत आप वैसे कर सकते हो, तो आप तब टेलीकाउंटर सकते हो, वो भी माला में ही काउंट होता है टेलीकाउंटर फ्रेंड्स ना, तो कम से कम कुछ तो गुण बढ़ेंगे। करना कुछ ना करने से हमेशा ही बेटर होता है ना। एक तो सोच ले कि मेरा टाइम ही नहीं है, छोड़ ही दिए बिल्कुल ही माला करने या टेलीकाउंटर पकड़ना, कभी भी आप चाहे लेटे हो, लेट के भी कर सकते हो फ्रेंड्स, कि आप थक गए हो, आप लेटे हो, तो आप टेलीकाउंटर पकड़ा है आपने, कम से कम 1-2 माला तो नींद से पहले आई कर लोगे आप पूरी कंप्लीट। इसलिए फ्रेंड्स ये पूरा एक मॉडल है कि आप अपने अर्चा विग्रह की पूजा करो, भगवद गीता पढ़ो, भोग लगाओ, एकादशी फास्टिंग करो, फैमिली के साथ आरती करो, चैंटिंग करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, अपने सत्संग के जो होते हैं और पॉडकास्ट वो सुन सकते हो, और जो यूट्यूब पे गोलोक एक्सप्रेस के वीडियोस होते हैं उन पे आप कमेंट्स कर सकते हो, फ्री बैठे हो, चलो कोई वीडियो देख लिया साथ में उस पे कमेंट्स कर सकते हो। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। व्हाट्सएप पे सेवा मिली होती है, रिव्यू सेवा, है ना, तो आप उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर सकते हो कि जब मुझे सेवा मिली तो मुझे बेस्ट वे में करनी है, चाहे उसको ऑडियो फॉर्म में या फिर उसको लिख के। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब हम कोई भी सेवा करते हैं ना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे ना, तो हमारा राजसी गुण बढ़ेगा। तामसिकता से हम बाहर आएंगे और हमारा राजसी गुण बढ़ेगा, और राजसी गुण में एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। तो इस मॉडल से हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की प्रेरणा मिलती रहती है, तो हमें वो प्रेरणा लेनी है, चाहे वो रिव्यूज देकर हो, चाहे वो अपने घर के काम ठीक से करके हो, या जो भी अपने अर्चा विग्रह की आपने सेवा ली है वैसे करके हो, चाहे आप कमेंट्स लिख रहे हो, है ना, यूट्यूब पर। तो आप क्या कर रहे हो, आप तामसिकता को छोड़ रहे हो, आलस को छोड़ रहे हो और रासिकता की तरफ बढ़ रहे हो। तो धीरे धीरे हम लोग डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन की तरफ बढ़ते हैं ना, और जब हमारी डिवोशनल एक्टिविटीज विद टाइम धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी ना, तो सारी चीजें जो भी भगवान हमें बता रहे हैं, जो भी ज्ञान हमें देना चाहते, जितना जरूरी हमें, उनको पता है हम कहाँ कहाँ अटके होते हैं, तो जो भी ज्ञान वो हमें देना चाहते हैं, जो भी मैसेज वो हमें दे रहे हैं ना, तो वो हमें सब कुछ धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाता है ना। इसलिए हमें हमेशा अपने सात्विक गुण को बढ़ाते चलना है, कम से कम ये सोच लेना कि कम से कम इसके नीचे नहीं जाना है। बस एक मन में लक्ष्य रख लेना है कि यहां तक तो मुझे पहुंचना है, पहुंचना है, और जब मैं पहुंची तो मुझे अब फिर बाकी छोटे छोटे काम करके ना ब्रेक नहीं लगानी है चीजों में, कि भाई मैं आगे बढ़ी और धड़ाम से नीचे गिरी तामसिकता वाले कार्य करके, है ना। तो कम से कम ये सोच लेना है कि मुझे बेस्ट करना है और सात्विकता वाले ही कार्य करने हैं और इसके नीचे नहीं आना है, बस दैट्स इट। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा, हरी हरि बोल। तो फ्रेंड्स, अब रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके क्या एक्सपीरियंसेस है, आप शेयर कर सकते हो। हरी हरि बोल।
हरी हरि बोल मोना जी। हरी हरि बोल एवरीवन। मोना जी, आज का सत्संग सच में बहुत ही आई ओपनर। आजकल हमारा चैप्टर भी चल रहा है प्रकृति के तीन गुण, उसी से रिलेटेड आपने एक टॉपिक रखा कि हम सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण, इन तीन जो तीनों गुण है ये हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे ऊपर कैसे एक्ट करते हैं, और हम फिर जब ये हमारे ऊपर एक्ट करते हैं तो हम खुद उन गुणों के अधीन होकर कैसे एक्ट करते हैं, ये आपने समझाया। तो सच में हमें राजसिक और तामसिक गुण घटाते हुए सात्विक गुण में कैसे आना है ये भी आपने बताया। सच में ये कुछ, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब हम भगवद गीता नहीं पढ़ी थी तो तब हमें ये बातें पता ही नहीं थी कि ये प्रकृति के तीन गुण क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आगे भी जो अब चैप्टर इसके बाद जो आएंगे उसमें ये तो अभी प्रकृति के तीन गुण बताए हैं, फिर हम उन गुणों के अधीन होकर कैसे चलते हैं, तामसिक गुण वाला कौन सा व्यक्ति होता है ये भी आएंगे, किस तरह से हम आगे काम करते हैं आगे, और भी ये प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर ही हमें मोना जी अगले चैप्टर बताएंगे कैसी श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, या जो भी मतलब आगे और भी हमें पता चलेगा। तो सच में भगवद गीता पढ़ते हुए इन सब चीजों का पता चला, तो जिससे हम अपनी ये गंदी आदतें बोलूं तो हम कुछ जो अपने अंदर के विकार थोड़े बहुत छोड़ पा रहे हैं, ये सब श्री हरि की कृपा और आपके सत्संग का सानिध्य से ही हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें छोटी छोटी बातें हमें पता चल रही हैं जो हमें अपनी लाइफ में पता ही नहीं थी। हम अपने ही मनगढ़ंत बातें जो मन में आया तब करते थे, क्योंकि तब हमारी इंद्रियां अपने वश में नहीं थी। अब हमने इंद्रियों को वश में करना, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना सीखा, वो भी इसी माध्यम से श्री हरि की कृपा से, अपनी इंद्रियों को स्पिरिचुअल एक्टिव, पहले तो डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन में आया ये सीखा, फिर डिवोशन में रहकर हमने कैसे अपनी एक्टिविटीज करनी है, किस टाइप की करनी है और कैसे करनी है ये सीखा, सिखाया आपने और आपके माध्यम से हमने सीखा, सीख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सच में आज तो फूड से रिलेटेड जो हम खाते हैं वो भी हमारी बॉडी के ऊपर इसी तरह से एक्ट करता है जैसे हमारे गुण एक्ट करते हैं। जिस तरह का हम रहन सहन खान पीन हमारा हम अपनी डे टू डे लाइफ में लेते हैं चॉइस, तो वैसे ही हम हमारे ऊपर वो ये तीन गुण एक्ट करते हैं। तो अगर हम सात्विक भोजन खाएंगे तो हम सात्विक, ये नहीं है कि हम सात्विक भोजन खाने से हम सात्विक हो जाएंगे, नहीं। मोना जी ने ये बताया ना कि पहले तो हमें अपने अंदर के विकारों को दूर करना है, उन विकारों को दूर करने के लिए हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, तो जब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे, श्री हरि से हम बातें करेंगे, अपना सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देंगे, हर एक बात को लेकर श्री हरि से ये प्रेयर करेंगे कि हमें प्रभु, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी है, ये प्रार्थना करना भी हमने सीखी, धन्यवाद करना हमने इस सत्संग के माध्यम से सीखा, क्योंकि धन्यवाद तो करते थे, यही ऊपर से मन से कर दिया, बहुत शुक्र है तेरा, बस जैसे हमने बड़ों को सुना होता, मैंने तो अपनी मदर इन लॉ को सुनती थी, वो जब भी कोई चीज खानी ना, रोटी खानी, तो उन्होंने जरूर ये बोलना, शुक्र है परमात्मा, शुक्र है माता रानी। तो मतलब उसका जो सही मीनिंग जो अब मैं समझ पाई हूँ कि किस टाइप में हमें थैंक यू बोलना है, हमें जो फैमिली मिली है, कभी हमने उनका कभी थैंक यू नहीं किया, मैंने अपना कहती हूँ, मैं औरों का तो नहीं कहती, मैं अपना कह रही हूँ कि मैंने कभी नहीं भगवान के आगे थैंक यू कि इतनी अच्छी फैमिली दी, क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं था ना, पहले भी नहीं सीखा था, तो बीच में कुछ बातें होती थी, मन में आता था कि नहीं, कई बार मोना जी ने अभी ये बताया कि कई बार अच्छे गुण होते हैं हमारे अंदर, हम उनको देख नहीं पाते हैं, तो अब वो उन गुणों को हम, अब जो भी बातें होती थी पहले मन में आता था कि नहीं ये बात नहीं करनी, एक अंदर से जो आवाज आती है आत्मा, जैसे हमने समझा कि हमारा ही हम आत्मा है, पहले हम तो बॉडी लेवल से ही बातें करते थे ना, हम आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ पता नहीं था, ये सब जो चीजें इस सत्संग के माध्यम से सीखी हैं, तो फ्रेंड्स, तो वो जो एक अंदर की आवाज आती थी वो नहीं सुन पाते थे, अब वो अंदर की आवाज भी हम सुन पा रहे हैं अच्छी तरह कि क्या गलत है क्या सही है। मुझ में था फ्रेंड्स एक, मैं घर से कहीं जाती थी ना, शादी से पहले भी यही था और शादी के बाद भी मुझे रहा कि कहीं जाना है तो घर में बोल के जाना, मम्मा हम इतने बजे तक आ जाएंगे, अगर कहीं गए उतने बजे तक घर नहीं पहुंचे, कुछ टाइम ज्यादा लेट हो गया, टाइम हो गया, तो मेरे मन में एक गिल्ट रहता था कि मैं तो घर में इतना टाइम बोल के आई हूँ, इतने बजे तक आ जाऊंगी तो नहीं पहुंची, तो ये बात ना, ये प्रोसेस मेरे शादी के बाद भी ऐसा ही रहा, मैंने कहीं बाहर जाना तो मैंने अपनी मदर लॉ को बोल के जाना कि मैं अपनी मदर लॉ को ऐसे बाबू जी करके बोलते हैं, तो उनको बोलना कि बाबू जी हम जा रहे हैं तो हम इतने बजे तक आ जाएंगे, अब गए हैं तो आधा पौना घंटा आगे पीछे हो ही जाता है, तो मेरे मन में ये रहना कि मैं तो उनको बोल के आई थी, तो फिर क्या वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मुझ में था कि एक जो सच एक बोला है तो उसको अप्लाई भी उसी टाइम में करना है, क्योंकि अब सत्संग में हमने ये सीखा ना, करनी और कथनी में बड़ा फर्क है, तो ये बातें इसी के माध्यम से सीख पा रही हूँ, मतलब प्रैक्टिकल बातें जो हम करते थे तो एक प्रॉपर टॉपिक वे से जो हमें समझाया जा रहा है इस सत्संग में, करनी और कथनी में फर्क, क्योंकि जो हम करते हैं और कहते हैं उनमें जो अंतर का एक गैप रहता है ना, वो एक गिल्ट कहीं ना कहीं मुझ में आती थी कि मैंने तो बोला है कि नहीं पहुंच पाई, अब क्या करूंगी, ये तो मेरी मतलब जवान भी मेरी झूठी हो गई, मैं झूठी बन जाऊंगी, मतलब मेरे मंत्र एक ही रहता था, तो धीरे धीरे सच में ये बातें अपने अब सत्संग सुन पा रहे हैं तो अपनी हर एक छोटी बात को रिलेट कर पाती हूँ, तो थैंक यू मोना जी, सच में आज का टॉपिक इतना अच्छा, अब हम यही कोशिश करेंगे कि अपने सात्विक गुणों को बढ़ाएंगे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बढ़ाते हुए, तो कोशिश नॉनवेज का तो यही था कि खाते तो हम पहले भी थे, चमोनम जाया हम भी खाते थे, शादी के बाद भी खाया, तो हमारे हमारे में है कि हमारे घर लड़का हो जाए तो नहीं खाना, टच वुड वो नॉनवेज हमारा वैसे ही छूट गया, तो बीच में पता चला काफी देर बाद कि हमारे में फिश खा लेते हैं, तो मैंने बीच में फिर फिश शुरू की क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे लगा नहीं अब ये फिजिकल प्रॉब्लम है जो मेडिकल प्रॉब्लम है, तो क्या पता ये नॉनवेज खाने से ठीक हो जाए, तो फ्रेंड्स मैंने हमने ये बताया था ना आपको, हमने 14 जुलाई 2020 को ये ग्रुप शुरू किया और उसी 2020 में दिसंबर में हमारे घर मतलब जैसे न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे घर में फिश आई, तो मैंने उस टाइम वो फिश नहीं खाई, उससे पहले मैं छोड़ चुकी थी, तो मेरे घर वालों ने बड़ा इंसिस्ट किया, नहीं भाभी आपने शुरू कराई है तो खा लो, मैंने बोला नहीं, अब मैंने मन बना लिया छोड़ दी, तो उसके बाद सच में मेरी फिश भी छूट गई, एग और नॉन वेज तो हम वैसे नहीं खाते थे, टच वो श्री हरि की कृपा से, वो जब मेरा बेटा फर्स्ट बेटा हुआ 93 में मेरी शादी हुई, 15 सितंबर को मेरा बेटा हुआ, तो जैसे ही मेरे घर बेटा हुआ तो मैंने नॉन वेज हमारा टोटली छूट गया, तो वो क्या पता श्री हरि की कृपा थी, और छोटी छोटी बातें ऐसी थी जो श्री कृष्णा की ओर हमें बढ़ा रही थी पर हमें पता नहीं था, क्योंकि अब मेरा दूसरा बेटा हुआ तो जैसे हम जाते हैं कोई दुख आए तो हम भागते हैं पंडितों के पास, हम लेडीज का होता है कि नहीं जाते हैं, ग्रह बताते हैं क्या है कुछ, तो हम भगवान को ब्लेम करते हो, अपने टिप्पणे जो भी लेके भाग जाना पंडितों के पास, वो जो बताएंगे वो ठीक है, फिर बाकी जो करना अपने मन का करना। तो ये सब बातें अब मैं सच रिलेट कर पाती हूँ। तो उन दिनों पंडित जी ने बोला कि आप अपने बेटे के लिए सत्यनारायण का व्रत होता है पूर्णमासी का, वो रखा करो। वो तब से मैं रख रही हूँ। तो फिर बीच में मेरे जो श्री कृष्णा लड्डू गोपाल जी थे हमारे घर में रखे हुए थे, मेरे मदर इन लॉ ने जब मेरी शादी हुई, तो वही होना कि जन्माष्टमी में उनका हार श्रृंगार करना, तो बस उसके बाद कुछ नहीं। जैसे हमारे घर माता रानी की है तो वो पूजा करनी, तो बीच में कहीं श्री कृष्णा की बैठे तो भगवान ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था, तो वो फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स उनके लिए आई बैठी थी कि बैठे बैठे रखे थे तो उधर बैठे पूजा रूम में जब पूजा करी थी एक दिन, तो मेरे मन में आया कि नहीं हमने तो अपनी माता रानी को इतने सुंदर आभूषणों से सजाया है, ड्रेसेस पहनाते हैं हम, उनको ड्रेसेस चेंज करते हैं, तो मेरे कृष्णा ऐसे मेरे अंदर से एक आवाज कि मेरे कृष्णा को तो कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने ना उनका श्रृंगार करना शुरू किया, जैसे कपड़े डलवाते तो कपड़े थे, बाकी जैसे कान का गले का उनका श्रृंगार करना शुरू किया छोटे छोटे चीजों से, तो वो कुछ अंदर से फीलिंग आनी थी। अब जैसे हम 2020 में श्री कृष्णा से जुड़े तो उन सब बातों को रिलेट कर पाती हूँ कि श्री कृष्णा ने हमें अपनी तरफ बुलाना था, तो ये मतलब थोड़े थोड़े बाद उन्होंने हमें अंदर से किसी ना किसी के जरिए माध्यम बने, मोना जी हम माध्यम बने, गोलोक सफर माध्यम बना, तो सच में ये बातें अब कर पा रहे हैं। तो जब हम इस रास्ते पे चले हैं तो इन सब बातों का हर एक छोटी छोटी बात को सीख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने चलना है और सीखना है। श्री कृष्णा ही एक ऐसे हैं जो सुख दुख हर घड़ी में हमारा संकट भी हरते हैं। भगवान तो हरते ही हैं पर हम ही ना, हम तो अपने इंसानों को मानते हैं कि जो हमारे आसपास लोग हैं हम उनसे ही अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो वो पता चला कि इंसान से तो प्रॉब्लम शेयर करना तो है ही है, पर जब हम श्री हरि से अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो उसका जो रिजल्ट हमें इंसानों से भी ज्यादा अच्छा मिलता है। जब हम इंसान से अपने अपनी फैमिली से रिलेट करते हैं कोई प्रॉब्लम शेयर, तो श्री हरि हमें अंदर से एक आवाज देते हैं नहीं, तो सच में ये रास्ता बहुत ही सही है, इस रास्ते पे हमें चलना है अपनी फैमिली को लेकर। और यही प्रेयर करनी है कि श्री हरि से प्रार्थना भी करनी है कि हमें अपनी हमारी फैमिली में जो भी है उनको भी अपनी उनकी बुद्धि में विराजो, उनको अपनी प्रेमा भक्ति दो, शुद्ध भक्ति। तो जब हम प्रेमा भक्ति के लिए प्रेयर करेंगे तो शुद्ध भक्ति भी भगवान हमें देंगे। तो उसके लिए हमें अपने अपने जो मोना जी ने बताया कि अंदर के विकार जो होते हैं काम क्रोध लोभ मोह, बड़े बड़े विकार हैं, वो हमें पहचानने हैं और श्री हरि की कृपा से हम वो पहचान भी रहे हैं। मैं भी आशा करती हूँ कि और डिवोटी जो हमारे ग्रुप में जुड़े वो भी ऐसा सोच पा रहे हो और कर पा रहे हो। तो थैंक यू मोना जी, आज का सत्संग बहुत ही दिव्य। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस आपने बताए ममता जी। तो मैं ना एक बात याद आ रही थी जब आप बात कर रहे थे, तो मेरी ना एक फ्रेंड है, तो वो एक्चुअली ध्यान के रास्ते में मेडिटेशन वगैरह करती है वो, और वो बोलती है कि जैसे मैं मूर्ति पूजा वगैरह तो बिल्कुल कर ही नहीं सकती, मेरे पास थे लड्डू गोपाल लेकर मैं कभी उनकी सेवा कर ही नहीं पाई, तो मैंने अपने आगे उनको किसी को दे दिए उन्होंने, और वो मेडिटेशन के रास्ते में है, है ना। जैसे उन्होंने कहा कि पहले तुम ऐसा करो, 3 महीने सोच लो कि मैं 3 महीने या 6 महीने सोच लो कि मैं सच ही बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, तो इस तरह से अपने पे वर्क करो। तो मैंने ये सोचा कि जब हम ये गोलोक एक्सप्रेस के मॉडल के हिसाब से अगर हम चलते हैं ना, चल रहे हैं मतलब, वो तो उसमें पहले हमें क्या बोला गया, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन में, और डिस्ट्रक्टिव रोज 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 जब बोली जाते हैं ना बातें, बोली जाती हैं रोज, जब सुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ बज रहा होता है कि हाँ हमें करना चाहिए, भी कर लेना चाहिए, हमें बोल रहे हैं देखो करके तो देखो, है ना। तो हम कुछ ना कुछ वो एड ऑन जो हम कर रहे थे उसमें हम वो चीजें डालने शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैं 2 टाइम सिर्फ जोत जगाती थी, लेकिन मैंने कभी चैंटिंग नहीं की, कभी भोग नहीं लगाया, कभी आरती वगैरह नहीं की, तो मैंने वो सब एड ऑन कर दी और माला भी करने शुरू होगी। तो ये चीजें करते रहने से ना अंदर से अपने आप ही वो फीलिंग आने शुरू होगी कि नहीं यार मुझे झूठ नहीं बोलना है, बोलती हूँ 100% मेरे हर चीज परफेक्शन हो गई है, ये नहीं है। ये सब जो भी चल रहे होंगे 2 साल से सब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि अब मैंने चाहे छोटी सी बात पे बच्चों को चाहे कई बार बोलना पड़ता है झूठ, है ना, तो मुझे लगता है यार नहीं मैं इसको सच में भी इसको बोल सकती थी, चाहे वो उसके भले के लिए था वो झूठ, चाहे कि मेरे को कई बार कुछ बात जैसे पेरेंट्स आप मदर्स हो तो आप सोच सकते हो, कई बार हमें खाने की उनकी हैबिट्स इतनी गंदी होती है तो हमें कुछ समझाने के लिए उनको बोलना भी पड़ता है कुछ बात, है ना। तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं ये बात मैं इसको सच बोल के भी बोल सकती, तो अपने आप ही वर्क होने शुरू हो जाता है। उसके लिए हमें स्पेशल सोचना नहीं पड़ता कि मैं ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है इस पे मैं वर्क करूंगी, नहीं वो सारा कुछ ही जब हम एक्टिविटीज करते हैं ना, डिवोशनल एक्टिविटीज और ये जब सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते पे चलते हैं तो ऑटोमेटिकली इन चीजों पे वर्क होने शुरू हो जाता है अंदर से ही। जैसे सात्विकता सत्य की राह पे बोलते हैं ना चल पड़ते हम कि हाँ जो जो अंदर से आवाज आ रही होती है कि नहीं भाई ये कर लो, तुम ये कर रहे थे ये करके तो देख लो एक बार, है ना, आदत पक्की कर ली होती है, नहीं नहीं ये डिवोशनल एक्टिविटीज क्या बोल रहे हैं, मैं तो सब परफेक्ट है, मैं तो बढ़िया अपना कर रही हूँ। तो जो मैंने देखा कि जो लोग ज्यादा तर्क नहीं लगाते ना, चुपचाप जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना, प्रोग्रेस उनकी ही होगी फ्रेंड्स। जब तक आप करोगे नहीं ना, उतरोगे नहीं, तब तक प्रोग्रेस नहीं होने वाली। तो बिल्कुल जो भी समझाया जाता है तो उसको कर लो, तभी आप इस जर्नी का आनंद ले सकते हो, है ना। थैंक यू सो मच ममता जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है?
हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल मोना जी। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही डिवाइन था, जिसमें आपने सिखाया कि हम कैसे तांत्रिक और राजसिक गुणों को छोड़ के हम सात्विक गुण अपना सकते हैं या कर सकते हैं। इससे पहले मैं कहूंगी कि लाइक मैं आज आपका कल वाला सत्संग सुन रही थी, थोड़ा स्कूल में टाइम था तो मैंने आपका कल का सत्संग सुना और उससे भी मुझे जैसे आप एग्जाम्पल्स दे के समझाते हो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से समझ आता है। तो मेरी भी एक हैबिट है, मुझसे कोई क्वेश्चन या कोई कुछ पूछता है चाहे वो किसी सब्जेक्ट से हो या फिर डे टू डे लाइफ का हो, तो मैं उस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी मम्मा को थोड़ा समझ कम आता है तो मम्मा को मुझे एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ता है। तो मैं जो मैंने कल के सत्संग से सीखा उसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाना मतलब कि बताना चाहूंगी कि मैंने क्या सीखा। वो ये था कि लाइक एक क्लास है, जैसे एक क्लास का कोई नेम दे दिया जाता है, जैसे हमारा एक पर्सन है, पर्सन को नाम दे दिया जाता है, जैसे मेरा मीनू है, मेरी मम्मा का शीतल है, आपका मोना जी है। तो एक क्लास है, क्लास है, जैसे एट्थ क्लास हो गई, सेवन्थ है, तो उसके अंदर जो बच्चे हैं मिक्स बैग मिलेगा आपको। कुछ बच्चे बहुत ही स्टडीज में बहुत पुअर होते हैं, वीक होते हैं, कुछ एवरेज हैं और कुछ हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, और उनसे भी उठ के कुछ होते हैं जीनियस, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हम जिनको कहते हैं। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो हैं उनको किसी टीचर की जरूरत, वो टीचर का वेट नहीं करेंगे कि वो हमें पढ़ाएगी तो ही पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इन एनी केस चाहे टीचर है या नहीं है। तो ये जो होते हैं जो सात्विक गुणों से भी उठकर जो डिवाइन जो होते हैं ना जो, तो वो है। और बाकी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो पढ़ते तो हैं और जब टीचर उनको समझाती है उनको समझ आ जाती है, वो कोई शोर नहीं कर रहे क्लास में बैठे हैं, तो वो सात्विक गुण है। हमेशा जब टीचर जो काम कहती है टीचर को फॉलो करते हैं, टीचर जिन बैड हैबिट्स को करने के लिए मना करती है वो वैसा ही करते हैं, तो वो टीचर को सुनते हैं और अच्छे काम करते हैं। फिर सात्विक एवरेज स्टूडेंट पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो क्या एक हो लेकिन वो उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, और एक पुअर होते हैं पढ़ाई में स्टडीज में जो वीक स्टूडेंट्स हो गए जिनका ध्यान पर शरारतों में नॉटीनेस। तो ये सारे एक क्लास के अंदर हैं, जैसे मैंने कहा कि एक क्लास जो है वो एक ह्यूमन बॉडी है, एक हम है, और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कर्म हैं, हमारे गुण हैं, तामसिक राजसिक सात्विक। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं चाहे वो घर बैठे हैं या वो स्कूल में हो कहीं भी हो, उनके बैक ऑफ द माइंड उनको यही होता है कि हमने कैसे इस नॉलेज गेन करनी है, वो किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है, वो नॉलेज गेन करने के लिए होते हैं। तो वैसा ही है। और आज जैसे मेरे पास आज स्कूल में टाइम था, इस सत्संग स्पेशली दिस चैप्टर 14 की वजह से मैं ये अपने जो मैंने मेरे पास्ट कर्माज हैं या जो मैं कर चुकी हूँ उनको मैं आप देखू कि मैंने अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ क्या क्या गलत किया है, कौन सा गुण कौन सा एक्शन मेरा तांत्रिक था कौन सा राजसिक था, जब मैं कंपैरिजन करने लगी कि उसने ऐसा किया है मुझे भी अब अपना बेस्ट देना है, चाहे उसके लिए मैंने कुछ गलतियां भी की होंगी बेस्ट देने के लिए, तो वो जो है एक बेस्ट की तरफ मेरा स्टेप्स जा रहे थे लेकिन वो एक क्वालिटी या कहूंगी सात्विक गुण नहीं था मेरा। हाँ कुछ सात्विक जैसे मैंने पिछले अपने सत्संग में मैंने जो रिव्यू दिया था कुछ सात्विक तरीके से मैंने बताया, लेकिन इतने इन सब इन तीन गुणों की नॉलेज होने के बाद इन फ्यूचर मेरा क्या है, मैं कोई भी एक्शन लूंगी उससे पहले मैं चेक करूंगी। तो ये जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है ना मुझे, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे लगता है सबके लिए बहुत जरूरी होगी। तो मैंने तो सच में कह रही हूँ, अब मैं एक एक चीज अपना एक्शन लेने से पहले पहले उसे मैं सोचती हूँ कि ये तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है। तो अभी जैसे आपने कहा कि हमें तामसिक भोजन को छोड़ना है, कौन सा भोजन राजसिक है, कौन सा भोजन सात्विक होता है। तो हमारे जो फैमिली में है, मेरे नॉनवेज मैंने भी खाया है, हम कश्मीर से बिलोंग करते थे तो वहां थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने शुरू से बचपन से ही कभी इतना रिलिश नहीं किया उस फूड को, कभी भी नहीं। शादी से पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, एग भी नहीं खाती थी। तो कुछ फैमिली की रिचुअल्स होते हैं, उन्होंने जबरदस्ती कि नहीं हमारे घर में बहुत जरूरी है खाना, तो कुछ देवताओं की कुछ पूजा होती है, तो शुरू किया। तब भी मैंने बीच में खाया छोड़ा, खाया छोड़ा, ऑन ऑफ रहा। तो अब किसी कारणवश तो नहीं, बस नहीं। अभी मेरी जैसे फिजिकल हेल्थ, बहुत सारे लोग मुझे, मेरे अपने जो जिनकी एक्चुअली में मुझे, मतलब कि जिनको मेरी फिक्र होगी, जो मेरे गुडविल चाहते हैं, वो मुझे कहते हैं कि तुम नहीं, तुम ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगी तब तुम फिर से छोड़ देना, तुम खा लो, एटलीस्ट एक तो ले लो। तो मैंने कहा नहीं भगवान, अगर मैं आज मुझे मेरी फिजिकल हेल्थ मेरी डाउन है या मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है मैंने कभी किसी को, किसी कोई मेरा ऐसा कर्म हुआ होगा जिससे, जिसकी वजह से ये मुझे सहने को मिल रहा है, तो मुझे ये भी अच्छा ही है, ठीक है, अच्छा है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं वो भोजन फिर से शुरू नहीं, वो नहीं ग्रहण करूंगी अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं करूंगी। तो जैसे आपने बताया कि आप, मैं प्याज छोड़ना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं प्याज छोड़ दूँ, लहसुन छोड़ दूँ, लेकिन जैसे आपने बताया कि अपने परिवार के लिए मैं भगवान को जो भी मैं भोग लगाना, भोग लगा, मैं काफी देर से जब से ये सत्संग शुरू किया है, धीरे धीरे मीनू दीदी ने जैसे जैसे समझाया वैसे वैसे किया, तो वो सब कुछ छोड़ दिया और अच्छी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं वो शुरू की। तो उसमें मैं भगवान को तीनों टाइम का भोजन, सिर्फ कुछ मीठा घर पे आता है तो वो भी भगवान को, कोई फल किसी भी टाइम का जब भी आए, तो पहले कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग से निकल जाता है, तो हम उस चीज का मुझे दुख होता है कि मैंने ऐसे कैसे कर लिया, बिना भगवान को भोग लगाए हुए कैसे मैं पहले खा लिया। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप तो ध्यान में रख सकते थे, मतलब कि जो उनके लिए भी एक नेसेसिटी बना रही हूँ कि ये हमें करना ही करना है, ये भगवान के लिए हमें करना है। अब इस जन्माष्टमी से मैंने भगवान का छोटा सा बेड लिया, उनका बेडिंग वगैरह सब कुछ कवर वगैरह। अब बच्चों को कि आपने रात को, जैसे हम खुद सोने जाते हैं, हम ध्यान रखते हैं, हमने नाइट ड्रेस चेंज करनी है, चलो ड्रेस उनको नहीं चेंज कराओ, लेकिन आप भी कभी मम्मा नहीं कर पाए तो आप करो, उनको सुलाओ, जगाओ। तो धीरे धीरे ये सारी एक्टिविटीज करके मन को एक बहुत अच्छा एक सुकून महसूस होता है, और मुझे लगता है यही सुकून है जो हम ऐसे दूसरी चीजों में, मटेरियलिस्टिक चीजों में ढूंढते हैं और वहां नहीं मिलती। वहां एक और ही रेस में बढ़ते जाते हैं, एक चीज मिली दूसरी चीज के लिए दौड़ो, तीसरी चीज के लिए, और यहाँ पे है बस सुकून मिलता है ना जो मन को ऐसी चीजें करके, ऐसी एक्टिविटीज, और किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप और आपके प्रभु होते हैं। तो मुझे ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच मोना दी, थैंक यू सो मच मीनू दी, थैंक यू सो मच।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ब्यूटीफुल लर्निंग्स मीनाक्षी जी, और हमेशा बहुत अच्छा बोलते हो आप। तो देखो ये मीनाक्षी जी, जैसे जो नए डिवोटीज हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि जॉब करती हैं, डीपीएस में टीचर हैं, तो ज्यादातर हम लोग हाउसवाइफ्स हैं। ये जो भगवत गीता की जो नॉलेज है ना, ये देखो हमें कैरियर में भी हमें गाइड करती हैं, ये सारी चीजें घर में भी गाइड कर रही हैं कि घर में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे हम भाग दौड़ रहे हैं, एक रेस में पड़े हुए हैं, रैट रेस में, तो हमें थोड़ा सा रुकना है, चेरिश करना है चीजों को, भगवान को थैंक यू करना है, फिर आगे बढ़ना है ना। ये चीजें पहले नहीं थी, हम बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा पाते थे, ठीक है बस वो दो टाइम पूजा कर ली, उसमें क्या सीख पाते थे बच्चे, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं कि चलो बच्चे आप भोग लगा लो, भगवान को सुला दो, जैसे आप बोल रहे हो, वैसे मैं, मेरी भी यही रूटीन है कि मैं बोलती हूँ कि चलो वसल पहले आप उठा दो उनको, है ना, सुबह, और फिर बाद में नहा देंगे उनको, चलो आप सुला दो उनको, है ना, उनको अच्छे से सुलाना, उनको अच्छे से पैर दबाना, उनके हाथ दबाना, उनका सिर दबाना, उनको अच्छे से कोई चीज सिखा रहे हैं, तो उनको भी होता है वो बड़े प्यार से उनको हाथों में लेता है, पहले किस करता है उनको भगवान को, बड़े बातें कर रहा होता है, अच्छा अभी तक जागे हो आप, जागे हो, सोते नहीं हो जब तक मैं आता नहीं हूँ, तो जब बातें उतते करता है फिर सुलाता है। तो मतलब मजा आता है कि कुछ तो जिंदगी अच्छे से चल रही है, कुछ तो हम अच्छा कर पा रहे हैं, है ना, भगवान को थैंक यू कर पा रहे हैं अंदर, अच्छी फीलिंग आती है। और क्या चाहिए, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं बच्चों के साथ, कुछ और भी बात कर रहे हैं, नहीं तो हम क्या बात करते थे, पढ़ाई की बात, है ना, वही रैट रेस में खुद भी फंसे हुए हैं, उनको भी यही चीजें सिखाते हैं। मेरे को ना आपने बात बताऊं, मुझे ये हमेशा लगता था कि यार मैं अपने बच्चों को क्या सिखा पा रही हूँ, कुछ भी, मतलब अच्छी चीज नहीं सिखा पा रही हूँ मैं, है ना, जो मैं पूजा कर रही हूँ वो कितना कर सीख लेंगे, वो उन चीजों को नहीं ज्यादा सीख पाएंगे। तो जब से वो लड्डू गोपाल आए हैं ना, या जब मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू किया ना, तो बातें करनी, तो हमें आंसर भी नहीं पता होते थे, अब बच्चों के साथ हम बात कर रहे हैं तो हमें वो आंसर भी पता होते हैं कि इनको कैसे रिप्लाई करना है, या कोई भगवत गीता को कोई श्लोक ही, कोई ये फंसे पड़े हैं उनको चलो कोई श्लोक ही समझा दो। और मीनाक्षी जी एक बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी, जो मैं प्रैक्टिस बोलती हूँ आपको, जैसे आपके फिजिकल हेल्थ, आप बोल रहे हो मेरी डाउन रहती है आपका बहुत टाइम से, मैं मुझे पता है, तो जो प्रैक्टिस मैंने बोली थी कि मंदिर में जाके आप कर सकते हो, वो आप करते हो?
जी जी जी, मैं
सॉरी करने वाली,
भोग, हाँ भोग लगाते हुए कि प्रभु मुझसे कोई गलती, मुझे उसके लिए, और मैंने भी किसी के लिए कोई अपने मन में वो नहीं रखा है, आप वो भी उनके मन से मुझे क्षमा दिलाना, और मेरे मन में भी किसी के लिए कोई वो नहीं है, प्रभु आप भी मुझे
माफ। कई चीजें तो हमें पता होती है ना, कि पर्टिकुलर लोगों को हमने कोई दुख दिया हुआ है, एक इसी जन्म की बात करें, पुराने जन्म तो चलो हमें पता नहीं है कुछ भी, क्या क्या करके आए हैं हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन इस जन्म में भी कई बार हमें पता होती है कि हमने, जैसे कोई याद होती है हमें कि गलती से या होगी हमसे गलती या इंटेंशनली होगी, तो उस सोल को आप सामने, जैसे आपने बैठना है मंदिर में, उस सोल को सामने रखना है अपने, जैसे प्रैक्टिस उसके लिए भी एक नित नियम है ना, उसको सामने रखना है, फिर उससे माफी मांगनी है कि मैंने इंटेंशनली किया या नहीं किया, तो मैं माफी मांगती हूँ। जैसे कई बार हमने कुछ भी नहीं किया होता, लेकिन फिर भी हमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है हमें एक पर्टिकुलर पर्सन से, है ना, तो वो कोई भी मेंबर हो सकता है, हमारा फैमिली मेंबर हो सकता है, या हमारी कोई फ्रेंड हो सकती है, या कोई नेबर हो सकता है, जितना ज्यादा क्लोज रिलेशन होता है ना, दुख तकलीफ हम उससे ही ज्यादा मिलती है फ्रेंड्स, है ना, ये सब ने फील किया होगा, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को जिससे हमें दुख तकलीफ मिल रही है उसको सामने लाके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि प्रभु मैं गलती से, मेरे से ये गलती होगी थी, या मुझे नहीं पता मैंने कोई गलती की है पिछले जन्मों में, शायद मैंने की है, तो मैं प्रभु माफी मांगती हूँ कि मुझे माफ कर दो। हर बार दिन में दो बार करोगे ना आप, महीना दो महीना आप करते रहोगे ना, तो बहुत ही इफेक्टिव ये फ्रेंड्स प्रार्थना है, और बिल्कुल 100% इसका आपको श्योर है कि इसका आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा ना, और वो जो कार्मिक अकाउंट है ना वो घटना शुरू हो जाता है हमारा। और मैंने भी किसी को अगर दुख दिया है तो मैं माफी मांगती हूँ, और अगर किसी ने मुझे दुख दिया है और जिसकी वजह से मैं परेशान रहती हूँ, मैं भी उसको माफ करती हूँ। तो बस फ्रेंड्स वो चीजें खत्म करनी है और आगे बढ़ना है बस। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। हाँ जी, कोई और है जो अपने, नीना जी आप बात कर सकते हो तो आप बात कर लो।
हरी हरी बोल एवरीवन। आज जी आज का सत्संग बहुत ही दिव्य और बड़े अच्छे ढंग से आपने हमें आज का टॉपिक करवाया कि हमें सत्वगुण में कैसे आना है, उसके लिए हमें कैसी एक्टिविटीज करनी है, और सबने बड़े अच्छे से रिव्यूज दिए इस टॉपिक पे। तो आज हमने ये समझा कि सच में ये जो लेसन हम प्रकृति के तीन गुण जो हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, मोना जी से इसका ज्ञान ले रहे हैं, तो सच में फ्रेंड्स अगर हम सिंसियरली सच्चे मन से, मैं भी कल से यही सोचे जा रही थी, कल का सत्संग मेरे से मिस हो गया, आज सुबह मैंने सुना, यदि हम अपनी रियल लाइफ में मतलब सिंसियरली इन तीनों गुणों पे हर समय ध्यान दे, अपना आत्म मंथन करें कि किस समय कौन सा गुण हमारे पर हावी है और वो क्यों है मेन बात, तो सच में फ्रेंड्स हम जो है अपनी लाइफ को, मैं बोलूंगी, एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये समझा कि हमें सबसे पहले मतलब अपने अपने विचारों पे ही चेक करना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा जो मन है वो प्रभु की ओर बढ़ रहा है या फिर दुनियादारी में ही फंसा हुआ है। और फिर इसके साथ हमने आज ये भी सीखा कि हमारा जो फूड है वो भी इसमें उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, तो हमें मतलब फ्रेश फूड ही लेना है जिससे हमारे जो विचार हैं वो भी सात्विक हो। और इसके साथ हमें जो है मतलब वो बोलते हैं ना, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है और अच्छा ही सुनना है, यानी ये भी चेक करना है कि हमारी संगत कैसी है, कि उस संगत से हमें कहीं नेगेटिविटी तो नहीं मिल रही, फ्रेंड्स हमने देखा होगा कई बार क्या हम सबके साथ ही ऐसा होता है कि कई बार हम मतलब पहले किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं और उसके साथ अगर हमारी संगत भी ऐसी हो कि हम हमारे ऊपर कई बार नेगेटिविटी बड़ी हावी हो जाती है, तो इस लेसन से मोना जी इस चैप्टर से हमने यही सीखा कि हम मतलब मैं अपनी बात कहूँ तो मैं झट से मतलब अपने उस टाइम सोचती हूँ कि मैंने आज क्या किया, मेरे साथ क्या ऐसा हुआ कि मैं क्यों नेगेटिव फील कर रही हूँ। तो सच में फ्रेंड्स अगर हम अपना आत्म देखें, वो बोलते हैं ना कि हम खुद ही अपने क्रिएटर भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं, और हम अगर इस बात को हर समय अपने मन में रखें कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, यानी कौन सा गुण किस समय हमारे साथ हमारे ऊपर हावी है और हमें कैसे इससे निकलना है, तो हम सच में अपनी जो हमारी प्रॉब्लम है उससे हम खुद ही बाहर निकल सकते हैं। तो इसके लिए जब हम ऐसा करेंगे मतलब डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन में जाएंगे, तो जो हमारे अंदर के सारे विकार हैं वो भी अपने आप ही समाप्त होते जाएंगे, हमारे विचार भी शुद्ध होते जाएंगे, और जो है प्रभु के साथ हमारा ट्रू कनेक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। सच में फ्रेंड्स हमने भगवद गीता के ज्ञान से ये समझा, जब हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर चले हैं तो ही हमने डिवोशन के सही मीनिंग को समझा, और सच में फ्रेंड्स भक्ति में ही मस्त थे। ये जो है इस पंक्ति को भी हमने इसी सत्संग में ही समझा। तो आज की इस टॉपिक से मतलब मेन लर्निंग्स यही है कि हमने जो है तामसिक और रजोगुण से ऊपर उठकर सात्विक गुणों में रहने के लिए प्रयास करना है, बट ये हमारी अपनी मेहनत है, हमें अभी अपने ऊपर बहुत वर्क करना है, क्योंकि हम जो है इस दुनियादारी में रहते हुए माया के गुणों में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। तो बस प्रभु श्री हरि से हमें हर समय ये प्रेयर करते रहना है कि हे प्रभु आप कभी भी मेरा हाथ पद छोड़ना, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और इसके लिए हमें जो है अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी नित्य निरंतर करते जाना है। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल।
ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज नीना जी, बहुत ही प्यारी लर्निंग्स रहती है आपकी हमेशा, थैंक यू। हाँ जी बहुत लेट हो गया फ्रेंड्स, हम अब है ना तो भजन की तरफ बढ़ते हैं। ममता जी आज आपकी भजन की टर्न, आप भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हाँ जी हरी हरी बोल मुना जी। फ्रेंड्स ये भजन मेरा सबसे पहला भजन था जब हमने सत्संग स्टार्ट किया था, और ऑन द स्पॉट मोना जी ने बोला कि आज चलो एक नया एक लेसन के अलावा एक नई प्रैक्टिस शुरू करनी है कि हम भजन रोज गाया करेंगे। तो सबसे पहले जब मोना जी ने मेरा नाम लिया तो उस दिन मैंने ये फर्स्ट भजन गाया था, तब क्योंकि श्री हरि से का ये भजन मैंने सुना था, तो उन मुझे ये भजन पर्सनली भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब इसमें श्री हरि के रूप का वर्णन बताया जाता है तो उसमें लगता है कि खो ही जाओ। तो अपने भजन की तरफ चलती हूँ। बांके बिहारी लाल की जय। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। तो फ्रेंड्स, ये जो इसमें वर्ड आया है शरण तिहारी, इस वर्ड का मैं मीनिंग नहीं सही मायने में समझ पाई थी। मैं तो एज ऑलवेज जैसे वर्ड टू वर्ड भजन लिखा है तो वैसे मैंने गाया। तो ये शरण जो वर्ड है, अब जब हम सत्संग से जुड़े हैं तो इसमें जो हमें मोना जी ने सिखाया, श्री हरि में सिखा रहे हैं कि जो भी मेरी शरण में आएगा उनकी विपदा मैं खत्म करूंगा। तो सच में ये शरणागत का जो हम श्री हरि के शरणागत हुए हैं, ये शरण वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। फ्रेंड्स, मेरे लिए तो है ही है, मुझे लगता है कि हम सबके लिए शरणागत वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हम उनकी शरण में गए हैं अब तो वो सब कुछ उनके ऊपर सौंप दिया है, तो वही हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें देंगे और उससे हम निकल भी पाएंगे। हम सब जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। माखन की मटकी फोड़ी, गोपिन संग अखियां जोड़ी। ओ नटकट रसिया तुझ पे, जाऊं मैं तो बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। उंगली पे गिरी उठाया, सारे गोकुल को बचाया। उंगली पे गिरी उठाया, सारे गोकुल को बचाया। जय जय हो तेरी जय हो, गिरिराज धरण गिरिधारी। जय जय हो तेरी जय हो, गिरिराज धरण गिरिधारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, मोहन कृष्ण मुरारी। मैं हर घड़ी शीश नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। जब जब तू बंसी बजाए, अपनी सुध को जाए। जब जब तू बंसी बजाए, सब अपनी सुध खो जाए। तू सब का सब तेरे प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। तू सब का सब तेरे प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई, और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई, और प्रीत की रीत चलाई। तुम राधा रानी के प्रेमी, जय राधे रास बिहारी। तुम राधा रानी के प्रेमी, तुम जय राधे रास बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं हर घड़ी शीश नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। हरी हरी बोल मोना जी, हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी।